السلام علیکم، یہ پارٹ 8 ہے، ناول بیچارہ شہزور۔ یہ ناول نابینا خواتین و حضرات کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ آواز کنول خلیل، پیشکش کرتبہ آڈیو لائبریری، مصنف ابن صفی بی اے۔ مزید کتب کی ریکارڈنگ کے لیے رابطہ کریں 03-00-291-9600 اور 03-21-21-38-225۔ تو آئیے سنتے ہیں پارٹ 8۔ جاتا ہے یہ جماؤں ایک ہاتھ، شیزو اٹھتا ہوا بولا، لینگویج پلیز۔ شیلا اس طرح ہنس رہی تھی جسے نشے نے ذہن پر قبضہ جمانا شروع کر دیا ہو۔ جیمسن پر تشویش نظروں سے اس کی طرف دیکھتا ہوا پیچھے ہٹ رہا تھا۔ شیزو کے دونوں ساتھی اٹھے اور جیمسن کو باہر نکال کر دروازہ بند کر دیا، لیکن ابھی دروازے کے قریب ہی تھے کہ شیزور نے انہیں بھی چلے جانے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا، جاؤ اس پر نظر رکھو۔ ان کے چلے جانے پر وہ شیلا کو گھورتا ہوا بولا تھا، کیا اس کے آدمی تمہاری نگرانی نہ کر رہے ہوں گے؟ میں نہیں جانتی۔ تم جانتی ہو کہ وہ اس وقت کہاں ہوگا؟ جہنم میں جائے، اتنے دنوں کے بعد شراب ملی ہے، مجھے چین سے پی لینے دو۔ میں نہیں جانتی کہ تم کون ہو۔ اچھی بات ہے، پی لو، میں انتظار کروں گا۔ وہ بوتل سے ایک گھونٹ لے کر بولی، میں تنگ آ گئی ہوں اپنی زندگی سے۔ وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں پولیس سے بچائے رکھنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہوں، اور اس وقت تک کرتا رہوں گا جب تک کہ یاسمین کا اصل قاتل نہ ہاتھ آ جائے۔ وہ تمہیں اس روپ میں فرحانہ جاوید کے بنگلے پر بھی لے گیا تھا۔ ہاں یہ درست ہے، وجہ بتائی ہوگی؟ نہیں، میں اتنی بور ہو گئی ہوں کہ اب اس سے کچھ نہیں پوچھتی۔ یہاں پہلے بھی کبھی لایا ہے؟ نہیں، آج ہی آئی ہوں۔ بور ہو رہی تھی کہ یہ دونوں مل گئے، دوسروں سے زیادہ صاف ستھرے نظر آئے تھے، اس لیے ان کے ساتھ ہوں۔ اس نے تمہیں موت کے منہ میں بھیجا ہے، آج وہ اور اس کا کوئی ساتھی زندہ نہیں بچے گا۔ کیا مطلب؟ دفعہ تن شیلا بہت زیادہ خوف زیادہ نظر آنے لگی۔ میں غلط نہیں کہہ رہا، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا، میرا آدمی پوری طرح تیار ہے، ملٹری تک سے نمٹ لیں گے۔ او تو کیا خون خرابہ ہوگا؟ بہت زیادہ۔ خدا کے لیے مجھے کسی محفوظ مقام پر پہنچا دو۔ اب میں تمہیں بالکل سچی بات بتائے دیتی ہوں، جلدی کرو، وقت کم ہے، وہ گھڑی دیکھتا ہوا بولا۔ اگر تم نے سچی بات بتا دی تو وعدہ کرتا ہوں کہ تمہاری حفاظت کی جائے گی۔ وہ یہاں کہیں آس پاس ہی موجود ہے، اس نے مجھے تمہارا حلیہ بتا کر کہا تھا کہ اگر تم یہاں موجود ہو تو میں تم سے مل بیٹھنے کی کوشش کروں اور پھر تمہیں تنہا اس مقام پر لے جاؤں جہاں چٹانوں کے دو شاخے کے درمیان لہریں جھاگ اڑاتی ہیں۔ تم نے دیکھا؟ شیزور چہک کر بولا، وہ یہاں قدم رکھنے کی جرات نہیں کر سکتا، لیکن آج کچھ نہ کچھ ہو کر رہے گا۔ شیلا کپ کپاتی ہوئی آواز میں بولی، کس کو پرواہ ہے؟ اس نے شانوں کو جنبش دے کر کہا، ابھی دیکھ لیتا ہوں، میں نہیں جاؤں گی، میں نے اسی لیے تمہیں بتا دیا ہے کہ اس کے مشورے پر عمل نہ کرنا پڑے۔ وہ کچھ کہنے ہی والا تھا کہ تین چار آدمی دھر دھراتے ہوئے چھت پر آ پہنچے۔ اپنے آدمیوں کے چلے جانے پر شیزور نے دروازہ بولٹ نہیں کیا تھا۔ خبردار، کوئی اپنی جگہ سے جنبش بھی نہ کرے، یہ کیا بےہودگی ہے؟ کون ہو تم؟ شیزور غرایا۔ پولیس، کیپٹن فیاض نے ریوالور کا رخ اس کی طرف کرتے ہوئے کہا، لیکن کس خوشی میں؟ تم شیزور ہو؟ یہ کیا چیز ہے؟ تمہارا نام شیزور ہے؟ خوب، اب کیا پولیس لوگوں کے نام بھی بدلنے لگی ہے؟ ٹھیک اسی وقت فیاض کی نظر شیلا پر پڑی تھی اور وہ چونک پڑا تھا۔ اس کا منہ حیرت سے کھلا اور بند ہو گیا۔ یہ کون ہے؟ اس نے غیر ارادی طور پر سوال کیا۔ میری بیٹی ہے۔ او بدماش معلوم ہوتے ہو تم، ابھی مزہ چکاتا ہوں۔ शायद तुमने एक अन्ना दुरानी का नाम नहीं सुना, जो जिंदगी से बेजार होकर हैप्पी बन गया है। लाओ निकालो अपना शनाख्त नामा, अगर पुलिस से तुम्हारा ताल्लुक है। इतने में कुछ और लोग भी वहां पहुंच गए, इनमें जफर और जेमसन भी शामिल थे। जरा देखना तुम लोग, शेजोर बावाज बुलंद बोला, ये बदमाश खुद को पुलिस वाला जाहिर करके मुझे लूटना चाहता है, लेकिन रिवॉल्वर नकली ही मालूम होता है। नहीं जनाब आली, अचानक जेमसन ने कहा, ये महकमा सरा गरसानी के सुपरिटेंडेंट कैप्टन फयाज हैं और रिवॉल्वर नकली नहीं है। ओ खबीज, तुम फिर आ गए। शेला मेज के पास से हट कर दीवार से जा लगी थी और अब आहिस्ता आहिस्ता खिसकती हुई दरवाजे की तरफ बढ़ रही थी। तो तुम शेजोर नहीं हो? फयाज ने सख्त लहजे में पूछा। मानवीय एतबार से कह सकते हो, लेकिन ये मेरा नाम नहीं है। होटल का मालिक दलावर खान मेरे बयान की तायद करेगा कि मैं कर्नल दुर्रानी हूँ। आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कर्नल साहब, दरवाजे के करीब से आवाज आई, आगे जाकर बात करो। फयाज के साथियों में से एक ने उसका बाजू पकड़कर धकेलते हुए कहा था और वो फयाज के करीब पहुंचकर बोला, मैं दिलावर हूँ, इस होटल का मालिक। अगर आपका ताल्लुक पुलिस से है तो आपको गलत फहमी हुई है, ये करना दुरानी है और अब मैं अजाला हैसियत अर्फी का दावा करूँगा। वो लड़की कहाँ गई? फयाज चौंक कर चारों तरफ देखने लगा और शायद शेजोर को भी पहली बार एहसास हुआ था कि वो खिसक गई है। हर जाओ बदबख्तों, वो धारता हुआ आगे बढ़ा, तुमने मेरी बच्ची को खौफजदा कर दिया। मजमा काई की तरह फटा था और जेम्सन अरे अरे ही करता रह गया था और शायद फयाज ने दिल ही दिल में इमरान को कोई गंदी सी गाली दी थी। अरे जनाब कैप्टन साहब, वो निकल गया, जफर मलिक बोला था। फयाज उन दोनों को जानता था, बारहा इमरान के साथ देख चुका था। पता नहीं क्या चक्कर है, फयाज बोला, मैं नीचे तुम दोनों की गुफ्तगु ही सुनकर ऊपर आया था। तुमने जिक्र किया था किसी लहीम शहीम हैप्पी का, आप कहाँ थे? जफर ने पूछा। तुम्हारे करीब ही वो उसकी बेटी थी। कमाल कर दिया, वो तो उसे धोसाता रहा था, जेम्सन बोला, बेटी बेटी नहीं थी, हमारे साथ थी। खुदा गारत करे, फयाज दरवाजे की तरफ छपटा। वो नीचे पहुंचे लेकिन शेजोर उसके दोनों साथियों का कहीं पता न था। जनाब कैप्टन साहब, उस लड़की ने उसे अपना नाम शैला बताया था और उसे कह रही थी कि मैं यास्मीन की रूह हूँ। ओह, वो इमरान का बच्चा, फयाज मिठाइयाँ भेज कर बोला। फयाज मुठ्ठियाँ बेच भींच कर बोला, उन्होंने क्या किया है जनाब? जेम्सन ने पूछा। तुम लोग यहाँ क्यों आए थे? हम रोज ही आते हैं, हमारे ही कबीले के लोग यहाँ पाए जाते हैं, इमरान ने नहीं भेजा था। सवाल ही नहीं पैदा होता, जफर अन मलिक ने कहा। चलिए बाहर देखें, जेम्सन ने कहा और फयाज कुछ कहे बगैर अपने आदमियों के साथ दरवाजे की तरफ बढ़ गया। ठहरो, जफर जेम्सन का बाजू पकड़ कर आस्ते से बोला था, आप कौन होते हैं तलाश करने वाले? हमसे सिर्फ यहाँ पहुँचने को कहा गया था, हो सकता है अपना रोल अदा कर चुके हों। मुझे यकीन है कि जो कुछ भी होने वाला था कैप्टन फयाज की मुदाखलत की वजह से नहीं हो सका, जेम्सन ने पुरतफक्कुर लहजे में कहा। यानी खेल बिगड़ गया, मेरा भी यही ख्याल है, दफादन एक आदमी उनके करीब आ खड़ा हुआ था। जेम्सन ने उसे ठीकी नजरों से देखा, ये वही था जिसने शेजोर के कर्नल दलानी होने की तस्दीक की थी, यानी होटल का मालिक दिलावर खान। तुम लोगों ने कर्नल की बेटी को छेड़कर अच्छा नहीं किया, उसने कहा। अरे भाई, वो खुद ही हमारे पास आई थी, शराब की फरमाइश की थी और तुम्हारे आदमी ने हमें ऊपर पहुंचा दिया था। ऊपर क्यों? दिलावर के लहजे में हैरत थी। उसने कहा था कि खाने और शराब की सर्विस खुली छत पर होती है। क्या तुम नशे में हो? यहाँ ऐसी कोई बात नहीं होती। सॉरी, सर्विसेज डाइनिंग हॉल ही में होती है। जरा बताओ तो वो आदमी कौन था? तुम बारटेंडर से तस्दीक कर सकते हो कि वेटर ही के कहने पर मैंने शीरे की बोतल की कीमत काउंटर पर अदा की थी। उसने कहा था कि पूरी बोतल इसी तरह मिल सकती है। ऐसा भी कोई तरीका यहाँ राइज नहीं है। तो फिर अब वो वेटर भी यहाँ नहीं मिल सकेगा, जफर अल मलिक ने मायूसी से कहा। और यही हुआ भी दिलावर ने अपने ऑफिस में मुलाजिमों की शनाख्ती प्रीत कराई थी, लेकिन वो वेटर इनमें नहीं था। शैला ने बड़ी फुर्ती से जीने तय किए थे और डाइनिंग हॉल में दाखिल होने से पहले ही इस तरह स्कार्फ सर पर डालकर गर्दन से लपेटा था कि चेहरे का निचला हिस्सा छुप गया था। डाइनिंग हॉल से गुजरकर बाहर निकल चली आई, खासदार तारों के अहाते से भी निकल आई थी और अब इस तरह बढ़ी रही थी जहाँ चट्टानों के दरमियान गाड़ी खड़ी की थी। सब कुछ इमरान की स्कीम के मुताबिक हुआ था, लेकिन वो सोच भी नहीं सकती थी कि मेन एन वक्त पर इस किस्म का कोई हंगामा उठ खड़ा होगा। वो तो शेजोर को बावर ही करा चुकी थी कि आखिर में इसने जो कुछ कहा था सच्चाई पर मबनी था। इसके बाद वो यकीनी तौर पर बाहर निकलकर साहिल के इस हिस्से की तरफ जाता जहाँ का हवाला इसने दिया था। इसे याद आया कि पुलिस वाला इसे देखकर चौंका भी था, लेकिन इमरान ने तो कतई नहीं कहा था कि वहाँ पुलिस भी होगी। वो गाड़ी के करीब पहुंची ही थी कि किसी ने इसका बाजू पकड़ लिया। वो उछल पड़ा। अंधेरा होने के बावजूद भी इसने अपने करीब खड़े हुए लंबे चौड़े आदमी को पहचान लिया। शेजो के अलावा और कोई नहीं हो सकता था। मैं शैला, मैं मनमनाई, डरो नहीं, मैं दुश्मन नहीं हूँ, तुम्हें बेटी कह चुका हूँ, शेजो नरम लहजे में बोला। जी कहिए, क्या बात है? क्या इसने पुलिस की मदद ली है? यकीन कीजिए कि इससे ज़्यादा मुझे और कुछ नहीं मालूम, जितना आपको बता चुकी हूँ। तो इस वक्त तुम इसके कब्जे में नहीं हो, जिधर चाहो निकल जाओ। लेकिन मैं पुलिस के डर से ऐसा नहीं कर सकती। पुलिस वाला तुम्हें यास्मीन की शक्ल में देखकर चौंक पड़ा था। मेरी समझ में नहीं आता कि पुलिस यास्मीन की मौत की जिम्मेदारी मुझ पर क्यों डाल रही है। अब तुम मेरे साथ चलो। आप कहाँ ले जाएंगे? किसी महफूज जगह पर। अचानक करीब ही कहीं किसी कुत्ते की खौफनाक गुर्राहट सुनाई थी और शेजोर उछल कर गाड़ी की ओट में हो गया। कोई कुत्ता किसी पर झपट पड़ा था और अब वो सचमुच थर थर कांपने लगी थी। दफादस ने शेजोर की आवाज सुनी, टेक हम कल, लेकिन वो किसी औरत की चीख थी। शेला ने बौखलाकर गाड़ी में घटने की कोशिश की और ठीक इसी वक्त वो कुत्ता न जाने किधर से उछल कर इसके पैरों के पास आ पड़ा था। इतना अंधेरा भी नहीं था कि करीब की चीजें ना दिखाई देती। कुत्ते के हलक से अजीब सी आवाजें निकल रही थी और वो दम तोड़ रहा था। किसी तरह से शेजोर की आवाज आई, अगर ट्रेटी आपका कुत्ता है तो ये मर चुका है। नहीं, इसके हलक से धार सी निकली थी और वह गाड़ी के ऊपर से छलांग लगाकर ऊपर आया था जिधर शैला थी। कैसे मर गया वो मुर्दा कुत्ते की करीब घुटने टेक कर इस पर झुकता हुआ बोला। ओ ट्रेची ट्रेची, इसकी आवाज भर्रा गई थी। फिर वो सीधा खड़ा होकर बोला, मगर वो किसी औरत की चीख थी। ये कैसे मर गया? वो भूत है, कोई माफूक अलफितरत हस्ती, शैला कपकपाती हुई आवाज में बोली। किसकी बात कर रही हो? इसी की, जिसकी कब्जे में हो। मैं कहता हूँ किसी औरत की चीख थी। हो सकता है आपका कुत्ता औरत की तरह चीखा हो और कुत्ते की तरह वो खुद भौंकता रहा हो। क्या बक रही हो? यकीन कीजिए वो ऐसा ही है। अगर मुझसे शादी पर आमादा हो जाए तो मैं दुनिया को एक अजीब तरीन फेल दे सकती हूँ। खबरदार जो बेशर्मी की बातें की। किसी तरफ से आवाज़ आई और शेजोर उछल पड़ा। फिर वो अंदाजा लगाने की कोशिश करने लगा था कि आवाज़ किधर से आई थी। अचानक इसने चीख कर कहा, सामने आओ, जरीर ब्लैक मेलर, तुमने मेरे कुत्ते को मार डाला है, तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन बस तो सन्नाटा छाया रहा। फिर शेरा जोर से हंस पड़ी थी। खामोश रहो, शेजोर गुर्राया, क्या इस गाड़ी की चाबी तुम्हारे पास है? है तो ला मुझे दो, अगर मैं इनकार कर दूं तो, शैला ने कहा। इमरान की आवाज सुन लेने के बाद वो शेर हो गई थी। चाबी लाओ, वो गाड़ी की छत पर हाथ मारकर बोला। हाय हाय, डंट पड़ जाएगा, आवाज फिर आई। दफातन शेजोर मुड़ा था और आवाज की जानिब दौड़ लगा दी थी। इमरान ने खेल बिगड़ते देखा था और वहां से खिसक गया था, लेकिन रुकने के लिए ऐसी जगह मुंतखब की थी जहां से चारों तरफ नजर रख सकता। इसके बावजूद भी इसे इल्म ना हो सका कि शेजोर किस वक्त होटल की हदूद से निकल गया था। वो तो शैला दिखाई दी थी और वो इसके पीछे चल पड़ा था। इसे इल्म था कि शैला ने कहाँ गाड़ी खड़ी की थी। वो गाड़ी ही की तरफ जाती दिखाई दी और फिर गाड़ी के करीब पहुँच कर वो किसी से गुफ्तगू करने लगी थी। इमरान सीने के बल रेंगता हुआ गाड़ी की तरफ बढ़ने लगा। कोशिश कर रहा था कि गाड़ी की दूसरी तरफ पहुंच जाए कि अचानक किसी जानिब से कुत्ता घुर्राकर झपट पड़ा। फिर जितनी देर में इमरान चाकू निकालता, किसी ने कुत्ते को हिदायत भी देनी शुरू कर दी और फिर उसने किसी औरत की सी चीख हलक से निकाली थी और हिदायत का सिलसिला मुनकता हो गया था। और इतनी देर में वो इस काबिल हो गया कि कुत्ते की आते निकाल बाहर करता। फायर नहीं करना चाहता था, शेजोर पर यही तासुर कायम रखना चाहता था कि वो तन्हा है। फायर कर देने की सूरत में फरियाद और उसके मातहत यकीनी तौर पर दौड़ पड़ते और शायद फिर खेल बिगड़ जाता, क्योंकि शेजोर तो छलावा था। शैला और उसकी गुफ्तगू ही से अंदाजा हो गया था कि वो शेजोर के अलावा और कहीं नहीं हो सकता। फिर उसने दोनों की गुफ्तगू में दखल अंदाजी करके उसे इस कदर ताव दिलाया था कि वो आवाज की सिमत तोड़ पड़ा था और अब उसे जो कुछ भी करना था इसके लिए पूरी तरह तैयार था। जैसे ही शेजोर करीब पहुंचा, इसने लेटे ही टांग चलाई और वो उस पर से कलाबाजी खाता हुआ दूसरी तरफ जा गिरा। फिर इमरान ने उसे दोबारा उठने का मौका ना दिया, बड़ी फुर्ती से उस पर छलांग लगाई थी और दबोच बैठने की कोशिश कर ही रहा था कि किसी बच्चे की तरह पर परे झटक दिया। सर के बल गिरा होता अगर हवास कायम ना रखता, खतरनाक, उसने दिल में कहा और बाकायदा जोर आजमाई का इरादा तर्क करके बगली हॉलिस्टर से रिवॉल्वर निकाल लिया। वो तो किसी आर्म ने भैंसे की तरह ताकतवर भी साबित हुआ था। खबरदार, रिवॉल्वर का रुख तुम्हारी ही तरफ है, उसने डपट कर कहा और शेजोर के बढ़ते हुए कदम रुक गए। लेकिन दूसरे ही लम्हे में उसका हिकायत अमेज कहकर सुनाई दिया था। तो सिर्फ 6 फायर कर सकेगा, लेकिन उसके बाद क्या होगा? उसके बाद तुम छलनी कहलाओगे, इमरान बोला। उसके बाद भी मैं तेरी हड्डियां तोड़ रहा होगा, फायर करके देख ले। अच्छा, तो फिर दूसरी सूरत क्या हो सकती है? तो मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकता, मैं तुझे मार डालूंगा। बेवकूफी की बातें ना कर, क्यों ना हम दोस्तों की तरह मिल बैठे। दरअसल अब मैं भी बिजनेस करना चाहता हूँ। बिजनेस करना चाहता है तो यहाँ पुलिस की मौजूदगी का क्या मतलब है? पुलिस मेरी तलाश में आई थी। बकवास है, मेरा नाम पुलिस तक तेरे ही तौसीत से पहुंचा है, वो भी महज इसलिए कि मेरे कई खास आदमी तेरे कब्जे में हैं, वरना चंद अफराद के अलावा और कोई भी मेरे नाम से वाकिफ नहीं है। कैप्टन फैयाज से मेरा नाम लिया था, इमरान निचला होंठ दांतों में दबाकर रह गया। फैयाज को उसने महज इसलिए यहाँ बुलाया था कि मामला साइकिल सर्विस से मुतालिक नहीं था। उन लोगों के अपने जराए होंगे, उसने कहा, मैं तस्लीम नहीं कर सकता। चलो, तीसरी सूरत क्या हो सकती है? सिर्फ तीसरी मौत, तेरी मौत। दरअसल तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा कि हकीकतन तुम्हें क्या करना चाहिए, इसलिए मेरा मुखलसाना मशवरा है اس وقت گھر جا اور صبح تک سوچ کر مجھے مطالعہ کر دینا۔ شہزور ہنس کر بولا، مجھے چرانے چلا ہے لونڈے، اتنے پڑھے لکھے ہو کر ایسی گھٹیا زبان استعمال کرتے ہو، تیرا دماغ تو نہیں چل گیا؟ اس سچویشن میں اخلاقیات کا درس دینے چلا ہے، میں نے کہا تھوڑی سی سوشیالوجی بھی پڑھا دو۔ کیا مطلب؟ علامہ صاحب، میں سے آپ کے چہرے کا خول اتار دینا چاہتا ہوں، عمران نے کہا، لیکن اپنی اس حماقت پر اسے سچ مچ پچھتانا پڑا تھا۔ شہزور نے کچھ اتنے غیر متوقع طور پر چھلانگ لگائی تھی کہ اسے فائر کرنے کا بھی موقع نہ مل سکا، ریوالور بھی ہاتھ سے نکل گیا اور پہاڑ تو آ ہی گرا تھا۔ اور پھر اس نے محسوس کیا کہ وہ اس کا گلا گھونٹ دینے کی فکر میں ہے۔ ٹھیک اسی وقت کسی گاڑی کے ہیڈ لیمپس کی روشنی ان پر پڑی تھی، شہزور کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی، پھر کئی فائر ہوئے تھے اور شہزور اچھل کر ساحل کی طرف بھاگا تھا۔ غالباً فیاض ہی کی گاڑی تھی اور اسے پھر حماقت سرزد ہوئی تھی۔ عمران اٹھ کر بے تحاشا شہزور کے پیچھے دوڑا، لیکن قبل اس کے کہ اس تک پہنچ سکتا اس نے پانی میں چھلانگ لگا دی۔ پھر عمران نے بھی قطع غیر ارادی طور پر اس کی تکلیف کی تھی، پانی ٹھہرا ہوا تھا کیونکہ یہاں چاروں طرف چٹانیں بکھری ہوئی تھیں اور وہ قسمت کا سکندر ہی تھا کہ سیدھا پانی ہی میں گرا تھا۔ اگر دو ڈھائی گز کا بھی فرق پڑتا تو کھوپڑی کے درجنوں ٹکڑے ہو گئے ہوتے۔ شہزور کا آس پاس پتہ نہیں تھا، وہ بآہستگی تیرتا ہوا قریبی چٹان تک پہنچ گیا۔ ٹھیک اسی وقت ایک فائر ہوا اور شعلہ سا اڑتا ہوا اس کے قریب سے گزر گیا۔ اس نے بڑی پھرتی سے غوطہ لگایا تھا، سطح پر ابھرے بغیر اسی طرف تیرنے لگا جدھر سے فائر ہوا تھا۔ ایک چٹان راہ میں فائل ہوئی اور اس نے سطح پر تھوڑا سا سر ابھارا۔ شہزور پھر ہاتھ سے نکل جا رہا تھا، اس نے دیکھا کہ وہ خشکی پر پہنچ چکا ہے۔ اس گھماؤ پر ساحل ڈھلوان تھا۔ عمران بے آواز تیرتا ہوا اس جانب بڑھا۔ اتنی دیر میں شہزور اوپر پہنچ کر نظروں سے اوجھل ہو چکا تھا۔ وہ بھی بدقت اوپر پہنچا کیونکہ بھیگے ہوئے جوتے ڈھلان پر پھسل رہے تھے۔ اوپر پہنچ کر چاروں طرف نظر دوڑائی تھی اور ایک جگہ بیٹھ کر ہانپنے لگا تھا، فیاض کا بھی کیا قصور ہے؟ اس نے سوچا غلطی خود اسی سے ہوئی تھی، بلایا تھا اسے تو پوری بات بتا دیتا۔ فیاض جیسے لوگوں سے محض اتنا ہی کہہ دینا کافی نہیں تھا کہ ہوٹل میں قدم نہ رکھے، بھلا کیوں نہ رکھے، جہنم میں جائے۔ وہ سر ہلا کر بڑبڑایا، پہچانا جا چکا ہے، بچ کر کہاں جائے گا۔ باتیں بازو میں ایک جگہ ایسی تکلیف ہو رہی تھی جیسے جلتی ہوئی سلاخ کھال سے ہڈی تک اتر گئی ہو، شاید کتے کی دانت لگ گئے تھے اور سمندر کے کھارے پانی نے زخموں پر مزید ستم ڈھایا تھا۔ اس نے جیبیں ٹٹولی، چاقو محفوظ تھا، ریوالور تو کھو ہی چکا تھا۔ چاقو کھول کر مٹھی میں دبایا اور اٹھ کر تاروں کی چھاؤں میں پہنچا ہی تھا کہ عقب سے کسی کے چھینکنے کی آواز آئی، جہاں تھا وہیں دھڑ سے زمین پر گر گیا اور تیزی سے آواز کی جانب کروٹ لی۔ نشیب کی ایک دراڑ سے کسی کا سر ابھرا تھا، پھر شانے دکھائی دیے تھے۔ چاقو کے دستے پر عمران کی گرفت مضبوط ہو گئی۔ تاریخ اور قداور ہیولا دراڑ سے برآمد ہو کر خود بھی عمران ہی کی طرح زمین پر گر گیا تھا، لیکن عمران کی طرف آنے کے بجائے مغرب کی جانب رینگنے لگا۔ فاصلہ زیادہ نہیں تھا، عمران کسی سانپ کی طرح پلٹا تھا اور اس پر جا پڑا تھا۔ چاقو کا پھر اس کے بازو میں اترتا چلا گیا، شاید اسی ہاتھ میں ریوالور بھی تھا اور اس طرح ہی میں ٹریگر دب گیا تھا۔ فائر کی آواز سناٹے میں گونجی، ساتھ ہی پولیس والوں کی سیٹیاں بھی فضا میں چکرانے لگی تھیں۔ غالباً فیاض نے مزید آدمی طلب کر لیے تھے۔ شہزور غراتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا اور ایک بار پھر عمران تنہا ہو گیا تھا۔ پتہ نہیں چاقو شہزور کے بازو ہی میں پیوس رہ گیا تھا یا وہاں ہی کہیں گر گیا تھا۔ बस इमरान ने महसूस किया कि शहबाज भी अब खाली हाथ ही है। दोनों आपस में घते हुए वेश्याना अंदाज में एक दूसरे को नोचते खसोटते रहे। इसी दौरान में इसके बाल इमरान के हाथों में आ गए और उसने जोर जो लगाया तो ऐसा मालूम हुआ जिसे वो चेहरे की खाल समेत उखड़ते चले आए हों। अचानक फिर किसी गाड़ी की रोशनी इन पर पड़ी और शेजोर इमरान को उछाल फेंकने की कोशिश में खुद ही चारों खाने चित गिरा। गाड़ी की रोशनी पूरी तरह इन्हीं दोनों पर पड़ रही थी। शेजोर ने उठ बैठना चाहा था कि अचानक इसका खोया हुआ रिवॉल्वर हाथ आ गया। इमरान पहले ही देख चुका था इसलिए शेजोर को फायर करने का मौका ना मिल सका। इसने बायां पैर रिवॉल्वर वाले हाथ पर रख दिया और दाहिने से थोड़ी थोड़ी पर ठोकर रसीद की थी। एक करिया सी आवाज इसके हलक से बरामद हुई और दांत निकल पड़े। खुदा की पना, ये तो इल्नामा है, अकब से फैयाज की आवाज आई। अब मुतादित टॉर्चों की रोशनियां इन पर पड़ रही थीं। इल्नामा की आंखें बंद हो गई थी, पता नहीं बंद रहा था या सचमुच बेहोश हो गया था। और शेजोर वो रहा, इमरान ने बालों की ढेर की तरफ इशारा किया था। शैला भी इनके साथ थी, दौड़ कर इमरान से लिपट गई और फूट फूट कर रोने लगी। इलामा के हाथों में हथकड़ियां डाल दी गई थीं। रोने धोने से क्या फायदा, इमरान इसके सर पर हाथ फेरता हुआ बोला, अब चलकर कोई ऐसा डॉक्टर तलाश करो जो कुत्ते के कांटे का टीका लगाता हो, वरना मैं थोड़ी देर बाद तुम्हारे ही कॉल के मुताबिक भौंकना शुरू कर दूंगा। उफ, मैं सुबह की सफेदी नमूदार होने लगी थी। दोपहर को रहमान साहब के तलब करने पर वो इनके ऑफिस पहुंचा था। उन्होंने इतला दी कि इलामा या तो बन रहा है या सच मुझ पागल हो गया है। महकमे ही के हवालात में इसे रखा गया था। फयाज के साथ वो हवालात की तरफ रवाना हुआ था और फयाज का ये आलम था जिसे इसने और इमरान ने एक ही कोख से जन्म लिया हो। अजीब चीज है ये इलामा भी, इसने कहा, बिल्कुल किसी 5 या 6 साल के बच्चे की सी आवाज में चीखता रहता है। इमरान चलते चलते रुक गया। दफातन के चेहरे की रंगत बदल गई थी। यकीन करो वो इलामा की पारदार आवाज नहीं है, किसी बच्चे की आवाज है, फैयाज ने कहा। इमरान ने तेजी से हवालात की तरफ कदम बढ़ाए थे। जहन में आंधियां सी उठ रही थीं और पहली बार एहसास हुआ था कि वो क्या कर बैठा है। इस दौरान में वो सिर्फ फैयाज की आवाज सुनता रहा था, इसका ध्यान नहीं कि वो क्या कह रहा था। हवालात के कठेरे के करीब पहुंच कर इसने इलामा को जमीन पर औंधे पड़े देखा। इसने इसे आवाज दी थी, इलामा ने इसे सर उठाकर देखा था, लेकिन इसकी आंखों में शनासाई की हल्की हल्की सी झलक भी ना दिखाई दी। इनमें ऐसी ही लातालुकी पाई जाती थी जैसे किसी चौपाई ने उठाकर इन्हें देख लिया हो। फिर अचानक वो चीखने लगा था, माँ माँ, बाबा बाबा, मेरे बाबा। आवाज सचमुच किसी 5 या 6 साल के बच्चे की सी थी। कमाल की आवाज बदलता है, फरियाद हंसकर बोला। शेजोर और इसकी असल आवाज में कितना फर्क था, इमरान कुछ ना बोला। इसका तालु खुश हुआ जा रहा था, हलक में कांटे से पड़ने लगे थे। इलामा फिर से अंदाज में माँ और बाबा को पुकारने लगा, फिर वो फूट फूट कर रोने लगा था। चलो, इमरान वापसी के लिए मुड़ा हुआ बोलता। फयाज इसे हैरत से देखता हुआ इसके पीछे चलने लगा। बाहर निकल कर इमरान बोला था, ये बन नहीं रहा, ज़हनी तौर पर माजी में लूट गया है। बाद सदमे ऐसे ही होते हैं, शायद इसलिए जिंदा था कि इनमें से आखिरी आदमी का भी खात्मा कर दे, लेकिन ना कर सका। कहाँ की हाँक रहे हो, तुम कुछ भी नहीं जानते। कैसा नहीं जानता, इलामा की पिछली जिंदगी के बारे में बहुत ज्यादा संजीदा हो रहे हो। हम सब दरिंदे हैं माय डियर फैयाज, सब कुछ सामने आ जाएगा। बाकायदा पूरी रिपोर्ट तैयार करके तुम्हारे हवाले कर दूंगा जिसे अदालत में पेश कर सकोगे, लेकिन इस शख्स के लिए मेरा दिल रो रहा है। काश इसके इंतकामी जज्बे ने इनफरादी रंग इख्तियार करने के बजाय ऐसी तहरीकों का साथ दिया होता जो जुल्म और जबर के निजाम को मिटा देने के लिए काम कर रही हो। कहीं मैं बेहोश ना हो जाऊं तुम्हें संजीदा देखकर, फयाज खोखली सी हंसी के साथ बोला था। इमरान के होंठ सख्ती से भींचे हुए थे और वो अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा जा रहा था। फयाज वहीं खड़ा इसे देखता रहा। इसकी आंखों में अजीब से तासरात थे। ये नॉवेल बेचारा शेजोर यहाँ इख्तिताम पसीर होता है। मजीद कुतुब की रिकॉर्डिंग के लिए राब्ता करें 03002919600 और 03212131225। कमर खलील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।